यदि अहम् अवर्तेयम् जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। श्लोक संख्या 22 में हमने देखा था भगवान कहते हैं, अर्जुन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मेरे लिए करना अनिवार्य है, नियत ही नहीं है, अनिवार्य नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और अभाव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है और अनिवार्य भी नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। भगवान कहते हैं 22वें श्लोक, फिर भी मैं कर्म करता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है। कर्म हम क्यों करते हैं? कर्म क्योंकि हमको अभाव का अनुभव होता है। वी आर मिसिंग समथिंग, वी नीड समथिंग, हमको कुछ चाहिए, कुछ वस्तुएं चाहिए, कुछ विषय चाहिए, उसका हमारे पास अभाव है, वो अभाव का हम अनुभव करते हैं, इसलिए हम कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे तो किसी चीज का अभाव ही नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं? क्योंकि मुझे किसी वस्तु का, विषय का, किसी का भी अभाव का अनुभव नहीं होता है, अभाव नहीं है ना ही आवश्यकता है, इसलिए मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, है ना? ऐसा कहे थे ना भगवान 22वें श्लोक में। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? इस श्लोक में कहते हैं, क्योंकि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। पहले श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं नियत कर्म करता हूं जिसकी मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मानो कोई विषय की, कोई वस्तु की या कोई कर्म की हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझिए थोड़े सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो हमको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है तो हम वो कर्म कैसे करते हैं? मान लो कोई कर्म कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो वो कर्म करते वक्त हमारा एटीट्यूड, हमारा भाव क्या रहता है? क्या हमको आवश्यकता थोड़ी है, करने के लिए करते हैं। हमको जब आवश्यकता लगती है कि भगवान की सेवा मैंने करना चाहिए, मेरी आवश्यकता है, भगवत कर्म, सेवा भाव, सेवा प्रेम, क्या प्रेममय सेवा, ये भाव जब हमारा होता है हृदय से, तब हम कर्म कैसे करते हैं? बड़े गंभीरता से करते हैं, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता समझते हैं। कोई कर्म ऐसा है जिसकी हमको आवश्यकता नहीं लगती है? इट्स नॉट नेसेसरी। प्रभु जी 16 माला रोज जप करना है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, बहुत सारे जरूरी काम है। वेनसडे, बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को क्लास में आना है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो जब हम आ जाते हैं तो क्या भाव रहता है? कैजुअल आए हैं, कोई बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं, है कि नहीं? समय तो ऐसे भी है अपने पास है? यह भाव होता है। आवश्यकता जब नहीं होती है किसी कर्म की, तो हम उसको कैसे करते हैं? एकदम उदासीन भाव से, निग्लेक्टिंग रहते हैं, हमारा नेचर निग्लेक्ट करते हैं, उदास, कोई इतना उसमें रुचि, उत्साह, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, क्योंकि नियत कर्मों को मैं सावधानी से करता हूं, यदि मैं वैसा नहीं करूं तो रॉन्ग मैसेज जाएगा। भगवान को जिस कर्मों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को नियत कर्मों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन नियत कर्मों की आवश्यकता नहीं होते हुए भी उसको सावधानी से करते हैं, भगवान। कौन? भगवान। और हम कौन है? हमको नियत कर्मों की आवश्यकता है, फिर भी हम उसको सावधानी से नहीं करते। जो भगवान है, जिनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सावधानी से करते हैं कर्म। और हम मनुष्य है, हमको आवश्यकता है, फिर भी हम सावधानी से कर्म नहीं करते। भगवान इतनी बड़ी बात सिखा रहे सावधानी से। वो यदि भगवान कहते यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो सारे समाज में क्या होगा? सारा समाज, सारा मनुष्य समाज मेरे पथ का ही अनुगमन करेगा, आलसी बन जाएगा, सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करेगा, है कि नहीं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
भगवान कहते हैं अतीन्द्रिय, इसमें बहुत सुंदर शब्द का वर्णन किया है भगवान ने, यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्म अन्य अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रितः तंद्री, अतंद्रितः। तो शब्द असल में क्या है? अतंद्रितः, कर्मण्य अतंद्रितः। तो अतंद्रितः का अर्थ यह है, अतीन्द्रिय उसका शब्द का अर्थ यह है, ऐसा व्यक्ति जो तंद्री का शिकार नहीं होता है। तंद्री समझते हैं? तंद्री मराठी में वो शब्द, वो समर्पक शब्द है, एकदम तंद्री लग गई, अपने मूड में सो गए, बेहोश हो गए, ऐसा समझ जाइए। सोया नहीं लेकिन बेहोश हो गए, आंखें खुली है लेकिन बेहोश हो गए, कभी कभी आंखें आधी अधूरी लग जाती है, तंद्री। तो ऐसा व्यक्ति जो तंद्री का शिकार नहीं होता है, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति है जिनको तंद्री लगती ही नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? पहले दूसरे अध्याय में हुआ है, जिसने इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है। और अतीन्द्रिय अर्थात जिसने तंद्री को नियंत्रित किया हुआ है, अर्थात निद्रा को नियंत्रित किया हुआ है। तो भगवान में ये दोनों गुण है, यहां भगवान अतीन्द्रिय है। ये अतीन्द्रिय एक बहुत ही बड़ा अवगुण समझ चाहिए इसको, बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा धोखा है हमारे लिए। इसका अनुभव हम हमेशा सत्संग में करते हैं, भागवत कथा हो, भगवत गीता का कथा हो, प्रवचन चल रहा हो, हमको हमारी तंद्री लग जाती है कि नहीं? कथा चल रही है, श्रवण हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे 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 करते 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 तंद्री लग जाती है। विशेषकर कथा में ऐसा हो जाता है, सत्संग में विशेषकर यह अनुभव सभी को आता है, क्योंकि क्या है, सावधानी पूर्वक हम हमारा आवश्यक कर्म नहीं करते, सावधानी नहीं है, अलर्ट नहीं है। तो विशेषकर कथा श्रवण करते समय इसका अनुभव होता है, और यह अनुभव बहुत ही घातक है। जो अमृत हमारे हृदय को आवश्यक है, जो कर्णों के द्वारा, कान के द्वारा पिया जा सकता है, परंतु ये तंद्री हमको पीने नहीं देती है, ये तंद्री, ये निद्रा हमको अमृत प्राशन नहीं करने देती, सुला देती है। सोने से कितने कितने लोगों का कितना कितना नुकसान है, आप समझ सकते हैं। कई बार कहा जाता है, अभिमन्यु का उदाहरण दिया जाता है, माता को नींद लगी, आधा अधूरा कथा सुन रही थी, नींद लग गई, कथा सुनते होता ही है तो कथा सुनते सुनते नींद लग गई, तो चक्रव्यूह के वापिस नहीं आ पाए, है कि नहीं? तो इसलिए तंद्री लगना बहुत भयंकर विषय है। ध्यान रहे, कभी भी सत्संग में तंद्री नहीं लगनी चाहिए। भगवान इस गुण को अतीन्द्रिय कहते हैं, ये भगवान का गुण है। तो भगवान यहां क्या कहना चाहते हैं? भगवान इस प्रकार यह कहना चाहते हैं कि कर्म करते हुए थोड़ी भी तंद्रिका शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे कर्म करते हुए थोड़ी भी तंद्रिका शिकार न होइए, क्योंकि यदि ऐसा शिकार हम हो गए, हमारे कर्म करते वक्त यदि हमारी तंद्री लग गई, तंद्रिका हम शिकार हो गए, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवान स्वयं क्या कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं स्वयं अपने नियत कर्म सावधानी पूर्वक करता हूं, मैं अतीन्द्रिय हूं, यदि मुझे तंद्री लग गई मेरे नियत कर्म करते वक्त, तो संपूर्ण मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान बोल रहे, संपूर्ण मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन को यह भगवान बताना चाहते, और इसी प्रकार से मेरा तुम अनुसरण, क्योंकि इसके पहले श्लोक में क्या कहा है, 21 नंबर 3.21, तो मेरा सारा संसार मेरा अनुकरण करेगा और सभी को तंद्री लग जाएगी अपने कर्म करते वक्त, और तंद्री लगने से क्या हो जाएगा, तंद्री का एग्जैक्ट मीनिंग अर्थ क्या है, समर्पक अर्थ क्या है, क्या तंद्री का अर्थ यही है कि निद्रा लग जाना, तंत्री का यह अर्थ है कि अपने नियत कर्म करते वक्त अनेक प्रकार के विचारों में व्यस्त रहे, अनेक प्रकार के विचार, बहुत ही विचार। देखिए माया देवी जो है, माया देवी 24/7 काम करती है, एक सेकंड भी माया देवी को तंद्री नहीं लगती, 24/7। हम जब अपने कर्म करते हैं, विशेषकर कर्तव्य कर्म करते हैं, उस क्षण माया देवी हमको इस प्रकार का प्रलोभन देती है, मान लो श्रवण कर रहे हैं, अभी हमका सत्संग चल रहा है, तंद्री लग गई, तंद्री कैसे लग गई, अनेक विचार उत्पन्न, क्या करे बारिश नहीं हो रही, क्या करे बारिश बहुत हो रही, क्या करे वो आग लग गई, क्या करे ट्रैफिक जाम है, नहीं तो 10-15 दिन पहले कुछ बात हुई होगी, वो विचार उसमें तो उसके तंद्री में लग गए। ऐसे अर्जुन नियत कर्म कर रहे हैं, रणांगण युद्ध के युद्ध स्थल पे है, बाण चलाना है, लेकिन तंद्री लग गई, क्या तंद्री लग गई, अरे बचपन में भीष्म पितामह ने मुझे कैसे अपने गोद में लिया है, तंद्री लग गई, कर्तव्य कर्म सामने है लेकिन क्या हो गया, तंद्री लग गई है। तो ऐसी तंद्री अपने कर्तव्य कर्म लगते वक्त यदि लग जाए तो हमारा नाश हो जाए। भगवान कहते थे मुझे लग जाए, अर्थात भगवान को ऐसी तंद्री लग जाए तो सारा मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा, और भगवान को तो इस भगवान तो अतीन्द्रिय है, अतंद्रिय, उनको तंद्री नहीं लगती है, तंद्री किसको लगती है, हमको लगती है, तो हमारा तंद्री लगने से सर्वनाश हो जाएगा। तो ध्यान रहे जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते वक्त हमको किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण यदि होता भी है, ये नहीं कदापि कहूंगा कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन या आकर्षण मन में नहीं होगा, अवश्य होगा, कलयुग का मन बड़ा भयंकर विचलित है, यह कदापि नहीं संभव कि मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं और मेरे मन में कोई भी ऐसे वैसे विचार नहीं आ रहे हैं, एकदम हंस पक्षी में शुद्ध शुभ्र, ऐसा नहीं होता है, विचार आएंगे, आसक्ति के आकर्षण के अनेक प्रलोभन, आकर्षित करने वाले अनेक प्रलोभन हमारे समक्ष मन के सामने उपस्थित हो जाएंगे, मन को सब कुछ अच्छा लगेगा, हम नियत कर्म कर रहे हैं, तंद्री उस विचारों में लग गई है क्या? तो कलयुग का ये मन है, इसका ये दोष है, ये हो गई, नो वन कैन स्टॉप, आने दो, होने दो, लेकिन क्या करना है तुरंत समझना ये है कि मुझे नियत कर्म करना है। जब आपका नियत कर्म करने का विचार हावी होगा तो दूसरे विचार शांत हो जाए, आएंगे विचार परंतु आते ही क्या हो जाएंगे, सो हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, विचार आएंगे परंतु विचार आते ही वो क्या हो जाएंगे, शांत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान, इसमें हम अपने ही माध्यम से अपना हमारा वर्णन कर रहे हैं, भगवान देखिए अपना उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखिए पार्थ कहते हैं तुम मेरे संबंधी हो, मेरे सगे हो, मेरे भाई हो, मेरे सगे संबंधी हो, और मेरे में ये सब गुण है, मैं अतीन्द्रिय हूं, मैं कर्तव्य कर्म करता हूं, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम सब एक ही तो गोत्र के हैं, अर्थात एक ही तो परिवार से संबंधित है, मैं मेरे में है, तुम में भी ये होना चाहिए, तुम्हारा भी जो वंश है बहुत बड़ा दिव्य वंश है, तुम्हारे में भी होना चाहिए पार्थ, आप में भी होना चाहिए। भगवान अपने ही स्वयं का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यह गुण हमको कितने आवश्यक है। ये तंद्रिय बहुत महत्व का विषय है, नहीं है कि नहीं, है कि नहीं बताइए, सारा प्रॉब्लम उसी से तो है, लगता ही नहीं। 45 कितना 80 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो 80 मिनट्स के लेक्चर में कितने मिनट तंद्री होती है ज्यादा ही होता होगा, मेरा तो ज्यादा होता है हाँ मैं बार बार सुनते रहता हूं, इसलिए बार बार एक ही लेक्चर 50 बार सुनता हूं, तब जाके हाँ ऐसा बोले थे, एक ही लेक्चर 50 बार सुनना पड़ता है क्योंकि तंद्री लगती है हम हर टाइम, हर टाइम तंद्री लगती है। तो बहुत महत्व का श्लोक है, इसमें भगवान स्वयं अपनी बात बता रहे हैं, तंद्री नहीं लगनी चाहिए वो कह रहे हैं, क्योंकि तंद्री लगती इसलिए क्योंकि माया देवी बहुत तत्परता से अपना काम करती है, माया देवी को तंद्री नहीं लगती क्योंकि शी इज वेरी सिंसियर इन हर सेवा, माया देवी अपनी सेवा में एकदम प्रामाणिक है, सिंसियर है, वो जब वो सेवा करती है तब उसके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता, यदि ये भक्त बैठे हैं इनके भक्ति की परीक्षा करनी है, उनको माया देवी को कितना भी प्रलोभन दिखाओ वो किधर नहीं जाएगी, आपकी परीक्षा लेने में लगी रहेगी पूरी तरह से, क्योंकि वेरी सिंसियर। ये माया देवी हमारी एक शिक्षा गुरु है, सीखना चाहिए माया देवी से कितनी सिंसियरिटी है, कितनी प्रामाणिकता से सेवा करती है, कितनी कठिनता से हमारी परीक्षा लेती है। हम कभी कहते ठीक बात है प्रभु जी, कभी कभी तंद्री लगती है, कभी कभी, इसलिए इस श्लोक में जातु यदि हम न वर्तेयम कहा गया है, जातु जातु कर्मण्य अतंद्रिय अतंद्रित जातु, जातु इस शब्द का अर्थ है कभी कभी अर्थात कभी कभी नींद आ जाती है प्रभु जी 15 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सब 15 साल से कर रहे हैं, इतना रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कभी एकाध दो बार नींद लग जाती तो कौन सी उसमें बड़ी बात है इसलिए भगवान कह रहे जातु कभी 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 कर्मण्य अतंद्रित जातु कर्मण्य अतंद्रित, अर्थात हम ये कहते हैं इसको कि कभी कभी मेरे कर्तव्य कर्म करते वक्त मुझे तंद्री लग जाती है, अर्थात मैं विपरीत मार्ग का अवलंब कर लेता हूं, कभी कभी, डोंट माइंड कभी कभी जातु कर्मण्य अतंद्रित। आपने हमारी बात है कि नहीं बताइए, हम प्रत्येक हमारी सबकी यही बात है कि भगवान कितना एकदम टू द पॉइंट उपदेश दे रहे हैं। हम कई बार कभी कभी एक आध बार क्या फर्क पड़ता है, यहां वहां चले गए, खा पी लिए या इधर उधर गए, चल जाता है कभी कभी जाते। इसी बात को भगवान कहते हैं ये कभी कभी भी बहुत गलत है। इसलिए पहले ही कहते हैं यदि है यम न वर्ते यम, सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए। मानो कोई बस का ड्राइवर है, 25 वर्ष तक उसने बहुत अच्छी 25 वर्ष से बहुत अच्छी ड्राइविंग कर, कभी कोई गलती नहीं की। यदि वो ये कहे 25 वर्ष से मैं कितना सावधानी पूर्वक ड्राइविंग कर रहा हूं, जा तू, अभी कभी कभी एक आध बार कभी नींद लग गई, क्या फर्क पड़ता है? एक आध मिनट के लिए कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? स्वयं के साथ सभी को। तो यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम यदि सोचते हैं कि सावधानी पूर्वक तो सारा आयुष्य सारा जीवन भर सावधानी पूर्वक रहा हूं, एक आध बार कुछ कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मानो ड्राइवर 25 वर्ष से कोई गलती नहीं किया, बड़ी सिंसियरिटी से गाड़ी चला रहा है, परंतु अचानक एक दिन उसको सोचा यह कि अभी थोड़ी नींद मार देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी तंदरी तो क्या हो जाएगा? उसके साथ साथ उसके जितने भी साथी हैं, जितने पैसेंजर हैं, सभी का नाश हो जाएगा। तो भगवान ये कहते हैं कर्तव्य कर्म करते वक्त एक हाथ बार भी तंदरी नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए क्या? अपने कर्तव्य हम कर्म कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। कर्तव्य कर्म क्या है? क्या है कर्तव्य कर्म? भगवान के उपदेशों का पालन करना, और क्या है? कैसे पालन हो सकता है उपदेशों का? भगवान के उपदेशों का पालन करना, परंतु कैसे करना? वो कैसे समझ में आएगा उपदेश? वो ज्ञान कैसे समझ में आएगा? परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के माध्यम से समझ में। गुरु परंपरा का आश्रय लेने के लिए क्या करना होगा? समर्पित होने के लिए क्या करना होगा? सत्संग में जाना होगा, और क्या करना होगा? व्यक्ति समर्पित कब हो सकता है? कौन सी श्रद्धा? ज्ञान, मैंने बहुत पहले कोई तो क्लास में हमारी चर्चा हुई थी, हमने कहा था ज्ञान दिया नहीं जाता, nobody can give knowledge, ज्ञान कभी भी दिया नहीं जाता है, ज्ञान लिया जाता है। यहां ब्रह्मदेव भी आ गए, बैठ गए और पूरे वेदों का ज्ञान आप हमको देने लग गए, हमारे लेने की हमको तंदरी लग गई, लेने का मूड ही नहीं है, तो क्या ज्ञान दे पाएंगे ब्रह्मदेव? यदि ज्ञान देने से दिया जाता तो सारे संसार में कोई अज्ञानी नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान तो फ्री में बांटा जाता है, फिर भी लोग ज्ञानी क्यों नहीं? क्या कारण? क्योंकि देने वाले ज्ञान दे रहे हैं पर लेने वाले ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं ज्ञान? तो इसका अर्थ है ज्ञान लेने के लिए कुछ तो भी चाहिए, कुछ तो योग्यता चाहिए। ज्ञान नॉलेज रिसीव करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता चाहिए? समर्पित का अर्थ क्या है? मुझे ज्ञान दो, ये समर्पित भाव, नम्रता, अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार कौन सा है हमको? मैं शरीर हूं, ये शरीर ही तो हमको सब अहंकार और सब सब कुछ देते रहता है। मैंपन का जो भाव है, शरीर की जो बुद्धि जो शरीर में जो लगी हुई है, उसके कारण ही तो अहंकार आता है, और अहंकार आने के कारण ही तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञान हम लेने का भाव में नहीं रहते, और ज्ञान जब हम नहीं लेते हैं तो हमारी तंद्री लगना निश्चित है। तंद्री लगेगी क्योंकि मन में भाव विपरीत है, ज्ञान प्राप्त करने का भाव नहीं है, है कि नहीं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान श्री कृष्ण कर्म करते वक्त बहुत सावधानी से कर्म करते हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। जरूरत नहीं है और फिर भी सावधानी से कर्म करते किस लिए? लोगों को शिक्षा देने। भगवान चाहते हैं ज्ञान देना, भगवान चाहते हैं प्रत्येक जीव को शिक्षित करना। देखो भगवान चाहते, और भगवान चाहने पर भी सारे जीव शिक्षित नहीं हो रहे, कितनी बड़ी बात है सोचिए, कितना बड़ा अपराध है। भगवान की इच्छा है कि यह ज्ञान प्रत्येक को प्राप्त हो, परंतु प्रत्येक जीव को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, यह फैक्ट है, कितना बड़ा अपराध है। तो अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ना? यदि हम भी इसी प्रकार से तंद्री में रहते हैं और ज्ञान को भगवान के उपदेशों को पालन नहीं करते, अर्थात नियत कर्मों का पालन नहीं करते हैं, तो हम भी कौन है? बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण स्वयं सावधानी से कर्म करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमको शिक्षित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में, शायद ऋषभ देव की कथा 5वें स्कंध में है, श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंध का 5वां अध्याय है, 5वें स्कंध के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ऋषभ देव के रूप में आते हैं। वहां वो अपने ही पुत्रों को शिक्षा देते हैं, अपने ही पुत्रों को शिक्षा देते हैं, सावधानी पूर्वक सब कुछ करते 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 अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा में क्या कहते हैं? नव योगेंद्र को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? माता और पिता, भाई और बंधु, मित्र और सखा, गुरु और साधु, ये सब जो कोई भी है, माता को माता या पिता को पिता बनने का अधिकार तभी है जब वो अपने पुत्रों को
शिक्षा।
कौन सी शिक्षा? कृष्ण भावना अमृति, आध्यात्मिक शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा। कृष्ण कॉन्शियस बनाने का यदि उनके अंदर भाव है, तभी वो अपने पुत्रों को या संतान को या कन्याओं को जन्म दे सकते हैं। यदि वो भाव उनमें है ही नहीं, तो किसी को भी माता पिता बनने का अधिकार नहीं। ऐसे ऋषभदेव क्या कहते हैं? ऋषभदेव कहते हैं कि मेरे अवतार को, मेरे अवतार होते रहते हैं, उस अवतार को साधारण लोग नहीं समझ सकते। जन्म कर्म चमे दिव्यम वो मे वेति तत्व का, जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, वो साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। वो कहते हैं भगवान ऋषभदेव, मेरा हृदय अर्थात शुद्ध सत्व है, मेरा हृदय अर्थात धर्म है। तो भगवान का संपूर्ण शरीर चिन्मय है, अर्थात हृदय और शरीर कोई डिफरेंट अलग अलग नहीं है। भगवान अर्थात साक्षात धर्म, भगवान अर्थात साक्षात शुद्ध सत्व, साक्षात धर्म साक्षात सत्व। और जब अधर्म आ जाता है सामने, तो उस अधर्म को मैं ऐसा अपने सिंह पे लेके ढकेल देता हूं पीछे, ऐसे भगवान कहते हैं ऋषभदेव। उस अधर्म को मैं फेंक देता हूं पीछे, इसीलिए मेरा नाम ऋषभ है। श्रीमद् भागवतम में भगवान अपने नाम की व्याख्या करते हैं, अधर्म को फेंक देता हूं, अधर्म को अन्याय को फेंक देता हूं मैं। परंतु लोग इस बात को आसानी से नहीं समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। अर्थात भगवान यह चाहते हैं कि मेरे उपदेशों का पालन करे और उसके आधारित जो कर्म है वो करे, वो करते वक्त कोई अधर्म को ना आने दे, कोई अनर्थ को ना आने दे, कोई आकर्षण को ना उत्पन्न होने दे, कोई आसक्ति ना मन में आने दे, है कि नहीं। हमारी साधारण से साधारण बातें यदि हम हमारे रोज के जीवन के लिए सुबह उठते से सारे काम हम फुल कॉन्सेंट्रेशन से करते नहीं करते हैं। केवल जो भक्ति है, जो आध्यात्मिक सेवा है, उसी में ही गड़बड़ होती है, उसी में ही तंद्री लगती है। अर्थात जो धर्म का कार्य है, जो साक्षात भगवान है, उसी कार्य में हमारा मन नहीं लगता है। ऑफिस के विचार आएंगे तो कोई व्यापार के विचार आएंगे तो कोई किसी के विचार आएंगे, इसके विचार उसके विचार, विचारों विचारों से हम हैरान होते हैं। लेकिन बाकी दूसरे दूसरे जब कार्य करते हैं तब कोई विचार नहीं आता, एकदम अच्छे से कार्य करते हैं, बौद्धिक काम। तो हम जितना अधर्म से, सॉरी अधर्म नहीं परंतु जितना हम अपने भौतिक कार्यकलापों से आसक्त है, उसका 50% भी यदि आध्यात्मिक कार्यकलापों से आसक्त हो जाए तो ये ऋषभदेव जैसा कह रहे हैं, अधर्म हमारे जीवन में जो भी अनर्थ अधर्म अपराध है उन सबको भगवान अपने सिंह से उठा के फेंक देंगे। ऋषभ है, हमारे जीवन में जितना भी अनर्थ है, अपराध है, अंधकार है, उसको भगवान अपने सिंह से उठा के फेंक देंगे, पटक देंगे बहुत दूर, पुनः अपने जीवन में कोई अंधकार नहीं होगा। लेकिन परंतु तकलीफ तो यही है कि हम भगवान के उपदेशों का पालन करने में हमारी तंद्री हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कहते हैं मैं सारे मेरे निहित कर्म सावधानी पूर्वक करता हूं। हमारे मन में कभी शंका भी आ सकती है, भगवान के ऐसे बहुत से कर्म हैं जो शास्त्र के अनुसार लगते ही नहीं लगता है ऐसे कभी मन में कभी प्रश्न आए, क्या कृष्ण के सारे कर्म शास्त्र के अनुसार है? हाँ, बोलिए, डर क्यों रहे कृष्ण के सारे कर्म शास्त्र के अनुसार है क्या? है कि नहीं है? है, कौन बोलना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। और नहीं, कौन बोलना? सारे कर्म शास्त्र के अनुसार नहीं, भगवान के सारे कर्म शास्त्र के अनुसार नहीं, कुछ कुछ तो विपरीत भी है, अलग भी है। कौन इस बात को मानता है? आप और शास्त्र के अनुसार कुछ कुछ कर्म शास्त्र के अनुसार नहीं है, ऐसा कौन मानता है? एक, दो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे
यदि आपने भागवतम का बहुत अच्छा श्रवण किया हो तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंध में है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं महाराज आप तो बहुत त्रिकालदर्शी सब ज्ञानी हैं, आपसे कोई ज्ञान छुपा नहीं है, ये कृष्ण की जो लीलाएं है कुछ जरा भगवान है मान लेता हूं, समझ गया हूं, परंतु जरा मुझे थोड़ा मेरा और प्रश्न है, जरा उसको आप अच्छे से समझाइए। भगवान को रासलीला करनी क्या आवश्यकता है? स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के साथ रात को रास नृत्य करने की क्या, कौन से शास्त्र में है? वेदों में है, पुराण किस में है? कौन से शास्त्र के नियम से भगवान ने ये लीला की? दही चोर चोरी करने की क्या आवश्यकता? अच्छा ठीक है, चोरी क्या, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? चोरी करे, दही खाए, बाद में बोले कि मैं तो दही नहीं खाया, मैंने चोरी नहीं किया, ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ? ये कौन से निहित कर्म है? ये कौन से शास्त्र के आधारित कर्म है? तो हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, आपको, आप बहुत ही भगवान के एकदम निकट है, भगवान के दर्शन आपको प्राप्त है। मैं अभागा हूं, अज्ञानी हूं, मेरा अज्ञान है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए परीक्षित महाराज किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज कृष्ण पे डाउट नहीं कर रहे, परीक्षित महाराज कृष्ण पे संशय नहीं कर रहे, परीक्षित महाराज अपने बुद्धि पे संशय कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि इतनी अनफन है, विचित्र है, मेरी बुद्धि इतनी कमजोर है, क्यों ऐसा विचार करती है कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? भगवान है वो, ये तो मेरा मान लिया मैंने, परंतु मेरे बुद्धि का दोष है। प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पद्धति ये होनी चाहिए, भगवान भगवान है, भगवान पूर्ण है, भगवान ज्ञानी, भगवान सब कुछ है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और झूठ बोलते हैं, अनादिरादिर गोविंद, और जन्म लेते हैं, परंतु वो भगवान है। भगवान है इस विषय से, इस श्रद्धा से और इस पूरे विश्वास से प्रश्न पूछना शुरू करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूर्ण विश्वास से प्रश्न पूछते कि कृष्ण तो भगवान ही है, परंतु मेरे बुद्धि से ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है, तो इसका क्या करे, इसको कैसे समझे? कृष्ण भी तो नियत कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, सारे कृष्ण के सारे कर्म क्या नियत कर्म है, शास्त्र पे आधारित कर्म है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यह बात आप निश्चित समझ लो कि ईश्वर के कोई भी कर्म में अधर्म नहीं होता है, ईश्वर के कोई भी क्रिया में अनर्थ नहीं होता है, कोई भी क्रिया। जैसे अग्नि है, अग्नि में आप घी डालो, शुद्ध शुद्ध सात्विक घी डालो, गाय की गोबरी डालो, चंदन के लकड़े डालो, उसी अग्नि में जो कुछ भी कूड़ा कचरा गंदगी है वो डालो, क्या अग्नि उससे अशुद्ध होती है? अग्नि किसी से भी अशुद्ध नहीं होती, चाहे आप उसमें एक, वही अग्नि जो है मृत शरीर को जला देती है, क्या वो अशुद्ध होती है? उसी प्रकार से अग्नि को कोई भी कर्म अशुद्ध नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ईश्वर को, भगवान को, उनके द्वारा की गई कोई भी क्रिया अशुद्ध नहीं कर सकती। अर्थात भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, कुछ भी होने दो, वो अधर्म नहीं। हमारे लिए नियम कानून सब कुछ है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च भगवान है। मानो ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, आप बोलेंगे अरे रुक जाओ क्योंकि रेड सिग्नल खड़ा है, लाल सिग्नल, लाल बत्ती जली है, हेलीकॉप्टर रुक जाओ, और फिर कहेंगे ये हेलीकॉप्टर रुक ही नहीं रहा है, कैसा हेलीकॉप्टर, लाल सिग्नल दिखता नहीं है क्या उसको? तो आपका रोड पर का लाल सिग्नल देख के हेलीकॉप्टर रुक जाएगा? और आप कह रहे कि अरे क्या है, लाल सिग्नल है, इतना दिख नहीं रहा है पायलट को, बस चलाने वाले हेलीकॉप्टर रुकना चाहिए, क्योंकि हम जो पैरामीटर्स में, हम जो एक सीमा में देखते हैं, जो नियमों में देखते हैं, वो नियम हमारे लिए, और उस उन नियमों के आधार पे हम सभी का आकलन करते हैं, सभी का। भगवान को भी हम उसी नियम में डाल देते हैं। हमारे लिए जो नियम है उसी नियम के अनुसार भगवान ने अपने कर्तव्य कर्म कर, भगवान हमको बोल रहे हैं क्या मेरे नियमों के अनुसार कर्तव्य कर्तव्य कर्म करना चाहिए, तो हम बोलते कि भगवान ने भी हमारे नियमों के अनुसार कर्तव्य करना है कि नहीं। भगवान बोल रहे मेरे नियमों के अनुसार कर्तव्य कर्म करो, तो हम भी बोलते भगवान भी हमारे नियम के अनुसार कर्तव्य करो। हमारा नियम है क्या, नियम है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना बराबर नियम है, लेकिन उसके अनुसार भगवान ने भी करना चाहिए। तो ये बात ठीक नहीं, भगवान के ऊपर कोई भी नियम कोई भी नहीं लगा सकता है। भगवान भगवान है, सुप्रीम है, सर्वोपरि है, परम है। तो इस प्रकार से भगवान के सारे कार्यकलाप जो है धर्म के आधार पर ही होता है। अब कोई सामान्य जीव है वो यदि सोचे कि जैसे भगवान करते हैं ऐसा ही मैं करूं, भगवान चोरी करते हैं मैं भी चोरी करूं, भगवान झूठ बोलते हैं मैं भी झूठ बोलूं, भगवान रासलीला करते हैं मैं भी क्लब में जाऊं रात को, ये ही तो भगवान ने बोला है ना, मैं जैसा करूंगा वैसे ही जनता करेगी, तो क्या होगा। भगवान शिव को सब जानते हैं, बहुत बहुत संसार में बहुत ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान शिव जी के भक्त हैं। वो क्या करते हैं पता है आपको, वो गांजा पीते हैं, जय भोले हर हर महादेव, मैंने देखा बहुत लोग, पर वो विष क्यों नहीं पीते, शिव जी ने विष भी तो पिया है ना, क्यों नहीं पीते, फिर वो क्यों पीते हैं। तो भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने चोरी की तो हम भी चोरी करेंगे, कृष्ण झूठ बोलते हैं हम भी झूठ बोलेंगे, कृष्ण ने पर्वत उठाया उंगली पे, आप रोज एक घंटा हर स्टेशन पे जाके लोगों का सामान उठा के देखिए, नहीं हो सकता। तो भगवान को भगवान भगवत तत्व के स्तर पे समझना चाहिए, भगवान दिव्य है, चिन्मय है, सर्वोपरि है, परम है। उनका अनुकरण करने का मन में विचार भी नहीं आना चाहिए, विचार भी नहीं आना चाहिए मन में, कृष्ण ने तो ऐसा किया, मैंने एक आध बार ऐसा किया तो क्या होता, ऐसा एक्शन तो छोड़िए, विचार भी नहीं आना चाहिए। इस बात से बहुत अलर्ट रहना चाहिए, इस बात से बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि कृष्ण का अनुकरण करने का विचार भी नहीं आ रहा। विचार आ गया जिस क्षण संत जहर पी लिया, वो ऐसा जहर है ना पूरे जीवन भर चढ़ता चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सब लोग सारा संसार दिन रात मेहनत करते हैं, देखिए माया देवी कितनी सक्सेस है, माया देवी का यश देखिए, सारे संसार को 24 आवर्स काम में लगा दिया, है कि नहीं, कितना काम करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
अखंड कर्म, अखंड हरिनाम के जैसा अखंड कर्म करते रहे। हमको इस प्रकार के कर्म करने की और इन विषय लोलुपता में रहने की इतनी आदत हो चुकी है, ये कर्म करने कर्म में उलझने की इतनी आदत हो चुकी है, नियत कर्म में नहीं भौतिक कर्म में। तो माया देवी ने हमको इतना उलझा के रखा है कि प्रत्येक उत्सव जब हमारा आता है उस प्रत्येक उत्सव में महत्व का क्या होता है? कर्म। महत्व का होता है कर्म। कोई भी उत्सव, विशेषकर हमारा वैदिक हिंदू उत्सव महोत्सव, कोई उत्सव आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है, कैसे शुरुआत होती है? कैसे शुरुआत होती है? शॉपिंग से, खरीद। और जो बीच बेचने वाले हैं उनका शुरुआत होता है खरीदी और बिक्री, वस्तु का आदान प्रदान। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा पूरा त्योहार उसी के इर्द गिर्द बनता है। देखिए, कोई भी त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें हमारी मानसिकता क्या रहती है? पूर्व के समय में त्योहार होते थे, उसका केवल उद्देश्य एक ही होता था कि आध्यात्मिक प्रगति हो और कर्म कैसे हो, कर्मों का शुद्धिकरण कैसे उत्साह से किया जाए, उत्साह से कैसे कर्म किया जाए, इसलिए उत्सव होते थे, इसलिए त्योहार होते थे। अभी गणेश जी आएंगे, दुर्गा जी, दशहरा, दीपावली, क्या होगा इससे? बहुत सारी रात दिन दुकानें लगेगी, डे एंड नाइट, और लोग जाएंगे गणेश जी को देखने के लिए, लेकिन क्या देखेंगे, क्या करेंगे? कितनी भयानक दशा है। कैसे नियत कर्म करेंगे? भगवान का आदेश है, उपदेश है कि सावधानी पूर्वक अपने नियत कर्म करना चाहिए। और इसका थोड़ा सा ट्रेलर, इसका ट्रेलर हमको उत्सव में, फेस्टिवल्स में मिलता है। अब हमको कौन सा ट्रेलर दिखता है फेस्टिवल्स में? कितनी भयानक दशा है। गणेश जी पूरा अखंड महाभारत उन्होंने लिखा, व्यासदेव ने उनको कहा कि महाराज आप जरा लिख दीजिए, आप पात्र हैं, आप में योग्यता है। गणेश जी बोले हाँ मैं लिखूंगा, लेकिन मैं वही लिखूंगा जिसका मुझे रियलाइजेशन होगा, अनुभव होगा, अनुभूति होगी। आप जो बोल रहे हो वो सब मैं तभी लिखूंगा, लिखते जो आप बोल रहे हो उससे मुझे अनुभूति होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलेगा मुझे अनुभूति नहीं हुई, आई विल नॉट राइट। उसी क्षण कलम रोक दूंगा, चला जाऊंगा। व्यास देव भी बड़े भगवान है, वो बोले लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, दोबारा नहीं बोलूंगा। इसका अर्थ क्या है? आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन। अर्थात गणेश जी को जरा भी तंद्री नहीं लगनी चाहिए। तंद्री नहीं, गणेश जी बोले ठीक बात है, वो तो गणेश जी है, बड़े भक्त हैं भगवान के, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया दोनों ने। और जो जो व्यास देव कहे वो गणेश जी लिखे। और क्यों लिखे? क्योंकि प्रत्येक शब्द का अनुभव उनको हुआ, प्रत्येक शब्द का अनुभव हुआ। पूरा संपूर्ण महाभारत लिख दिया, 100,000 श्लोक, उसमें भगवत गीता भी है, महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता है। प्रत्येक शब्द का गणेश जी को अनुभव हुआ। और ये सब कुछ लिखने के बाद गणेश जी एकदम संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। और वो ऐसा शास्त्र लिखा कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में वो सुपरहिट हो गया। जो गणेश जी ने सॉन्ग लिखा वो सुपरहिट हो गया। आपने मान लो एक आधा सॉन्ग लिखा और वो बहुत सुपरहिट हुआ, और मैं आपके सामने आ रहा वाला, देखो देखो आपने लिखा हुआ सॉन्ग मैं पढ़ के बताता हूं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। गणेश जी आते हैं, गणेश जी 10-11 दिन बैठते हैं जगह जगह, गली में, कूचे में, रोड साइड में, कहीं पे भी, जहां बैठा तो वहां बैठ जाते। उनको क्या सुनाना चाहिए? भाई गणेश जी आप बहुत ही दिव्य भक्त है, बहुत बड़े भगवान के निकट है, आपके पास इतनी दिव्य शक्ति है, आपने भगवत गीता को रियलाइज किया, अनुभव कर लिया भगवत गीता का, आप ही ने लिखा। गणेश जी मैं इसमें के 2 श्लोक आपके सामने बोलता हूं। गणेश जी जहां बैठे हैं ना लड्डू छोड़ के उठ के खड़े हो जाएंगे, क्या सही बात है, मेरा किसी को भी प्रशंसा अच्छी लगती है। गणेश जी बोलेंगे मैंने लिखा है, मेरी बात ही मुझे समझा रहा है, सुना रहा है, क्या समझदार व्यक्ति है ये। बोले 11 दिन गणेश जी होते हैं, 11 दिन में मैं समझता हूं 11 सेकंड के लिए भी कोई भगवत गीता गणेश जी के सामने नहीं ले जाता, कोई ले जाता है। ये उत्सव है, किस लिए है? इसलिए है कि गणेश जी जो विघ्न हरता है, जो हमारे जो कुछ भी विघ्न आते हैं सांसारिक जीवन में, उनको आध्यात्मिक जीवन में उनको दूर करते हैं, उनको भगवान नरसिंह की शक्ति प्राप्त है नरसिंह भगवान से, ऐसे गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, उनको गीता के दो श्लोक सुनते से उनको प्रसन्न करते हैं, तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। हमारे नियति कर्म, नियत कर्म जो है वो नियत कर्म करने में जो भी बाधाएं आएगी वो दूर हो जाएगी, और वो नियत कर्म करने में हमको उत्साह प्राप्त होगा। गणेश जी के पास दो शक्ति है, रिद्धि सिद्धि, जो भी हम कर्म करते हैं नियत कर्म उसको सिद्ध कर देंगे गणेश जी, है कि नहीं? लेकिन परंतु गणेश जी के, गणेश जी को क्या क्या सुनाते हैं क्या सुनाते हैं देखिए। मैं इसके पहले भी शायद कहा हूं, कहा मुझे स्मरण नहीं है, अभी दो तीन दिन में बहुत भारी चर्चा हुई थी कहां पे आप, उसमें मैंने एक बात कही थी, यहीं पे हुई है कहां पे पता नहीं, मैंने ये कहा था कि अभी सारे के सारे जितने भी देवी देवता है 33 कोटि के 33 कोटि सब परेशान होकर चले गए इधर से, कोई नहीं आता है, कितना भी आप कुछ भी करो कोई नहीं आता। अरे उनके सामने कितना तमाशा हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? भगवान ने श्लोक में बताया सावधानी पूर्वक मैं ये सब विषय इसलिए ले रहा हूं, सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए। मैं भी करता हूं ऐसे भगवान बोल रहे। तो ये जो हम गणेश जी से प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेके कर्तव्य कर्म अपने सुधार सकते हैं, अपने जो ऑब्स्टेकल्स है जो तकलीफें हैं उनको दूर कर सकते हैं, और उनको होता है। माया देवी यहां पर भी सक्सेस हो जाती है। जीव सोचता है गणेश जी के माध्यम से देवी देवताओं का मदद लेके माया देवी को हरा दूं, लेकिन माया देवी यहां भी ऐसे हो, क्योंकि वो आपसे हमसे ज्यादा सिंसियर है। बराबर गणेश जी के सामने वो क्या करेगी, ऐसा नचाएगी कि गणेश जी वहां बैठ ही नहीं पाएंगे, बैठ ही नहीं, एक सेकंड के अंदर भाग जाने की इच्छा हो जाएगी उनकी, होगी सक्सेसफुल। फिर उसके पश्चात क्या आता है, दुर्गा जी, नव दुर्गा, नवरात्रि होती है, नवरात्रि अर्थात शक्ति को प्रसन्न करना है ना। नवरात्रि नौ दिन नवरात्रि, पहले तीन दिन दुर्गा की पूजा करते हैं, दूसरे तीन दिन लक्ष्मी की, तीसरे सरस्वती की, और तीसरे तीन दिन लक्ष्मी की पूजा, कोई कोई सिक्वेंस से करते हैं, ऐसे हो गए नौ दिन। दुर्गा कैसी है, बड़ी भयंकर है, एकदम जीभ बाहर निकाल के खड़ी है एकदम। तो उस दुर्गा को प्रणाम करके तीन दिन उनकी तपस्या करके उनकी साधना करके यह हमको करना है कि हमारी जितनी भी भौतिक आसक्ति है, हे दुर्गे, क्योंकि ये भौतिक संसार की आप पेड़ है, दुर्ग को संभालने वाली दुर्गा है, तो इस दुर्गमे में पड़ाऊ और इसके प्रति बड़े आकर्षण निर्माण हुए हैं, तो हे दुर्गे ये सब आसक्ति मेरे कर्म करते। जब दुर्गा तीन दिन तक आप प्रसन्न उनको प्रसन्न करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी, और फिर आपको क्या होगा, लक्ष्मी का दर्शन होगा। लक्ष्मी जी क्या करेगी, आपको लक्ष्मी देगी, अर्थात तो क्या धन देगी, सब लोग लक्ष्मी का एक ही अर्थ समझते, लक्ष्मी को इतना संकुचित कर दिए, लक्ष्मी अर्थात धन, बस हो गया, ऐसे ही समझते हो, लक्ष्मी को इतना कमजोर बना दिया, लक्ष्मी अर्थात धन, बस लक्ष्मी अर्थात ऐसा धन जो हमको जीवन भर उपयोग में आए, अर्थात हमारी बुद्धि, हमारी बौद्धिक शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति, फिर हमारी भौतिक शक्ति, यह सब देने वाली लक्ष्मी, फिर वो इन सब बातों को लक्ष्मी शुद्ध कर देती है दूसरे तीन दिन। ये सब दोनों बातें जब हो जाती है तो आखिरी के तीन दिन सरस्वती वो ज्ञान देती है, तब हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आना शुरू होता है। और फिर वो ज्ञान के माध्यम से दसवें दिन अज्ञान को खत्म कर देते हैं भगवान की कृपा से, अर्थात रावण को खत्म करके राम का विजय हो जाता है। यह है दशहरा, है कि नहीं? अब सोचिए, जैसे ही आपको नवरात्रि का स्मरण होता है क्या आता है मन में? बस हो गया, कैसा नियत कर्म होगा, कैसे आसक्तियां दूर होगी, कहां से ज्ञान आएगा, कहां से अनर्थ दूर हो गए। ये इतने सारे उत्सव है ही इसलिए कि हम वो नियत कर्म करने के लिए उत्साह प्रदान करते हैं, नियत कर्म करने के लिए सावधानी पूर्वक, जो भगवान यहां कह रहे हैं। लेकिन हमारे प्रत्येक उत्सव को केवल हमने, केवल हिंदू भाइयों ने ऐसा किया, बाकी धर्मों में बहुत अच्छे से। अभी रमजान चल रहा है, देखिए मुसलमान भाई कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, पूरे भूखे पैसे रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नियमों को तोड़ मरोड़ के रख दिया है किसने? केवल हमारे भाइयों ने। प्रत्येक त्योहार को तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, एकदम विपर्यास कर दिया है, एकदम अपसाइड डाउन, जिसके लिए नहीं है उसी को कर दिया। गरबा होता है, क्या होता है उसमें? पहले तीन दिन दुर्गा रहती है उसमें, इतनी भयंकर रूप लेके खड़ी रहती है, उग्र रूप रहता है, और वो रूप इसलिए है कि आप इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखो। और होता क्या है, गरबा में इंद्रिय तृप्ति के लिए खेलते हैं, भगवान को या देवी को प्रसन्न के लिए कोई नहीं खेलता, उसके लिए खेलते तो ऐसे क्या बोलते, क्या गाते थे भगवान,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो ये हमको इन बातों से बहुत कुछ समझना चाहिए। हम समाज को दुरुस्त नहीं कर सकते, हम प्रत्येक व्यक्ति को जा कि ये सब गलत है ऐसा नहीं बोल सकते, ना ही बोलना चाहिए, लेकिन हम स्वयं से शुरुआत कर सकते। स्वयं से शुरुआत करने का अर्थ है मैं और मेरा परिवार। यदि हम समझ गए तो मेरा अति निकट का कोई संबंधी उसको समझा, कोई मेरे अति निकट का कोई मित्र उसको समझा, समझाओ नियत कर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, भगवान के उपदेश क्या है, उत्सव क्या है, उत्साह क्या है, समझाना चाहिए। लेकिन प्रश्न है हमारे पास क्या नहीं है? आजकल तो 5 साल के बच्चे के पास भी समय नहीं, 4-5 साल का बच्चा उसके पास भी समय नहीं, बड़ा दुख होता है सब समझ, समय नहीं है। 4 साल का बच्चा, 5 साल, नो टाइम, क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है, पूरा शेड्यूल है टाइट। 5 घंटा स्कूल है, 2 घंटा होमवर्क है, 1.5 घंटा 2 घंटा टीवी है, उसके बाद 2 घंटा गपशप खेलकूद है, फिर कोई डांस क्लास, ड्राइंग क्लास नहीं, डांस क्लास, वो बहुत विचित्र विचित्र क्लास है। तो बच्चों को, 4 साल के बच्चों को समय नहीं, इतने सारे क्लास में उसको ये सुपर क्लास कब देंगे आप, कब देंगे बताओ? ये सुपर क्लास है, उसी के लिए समय नहीं है कि नहीं? वास्तविक बात नहीं है, समय नहीं है, फैक्ट है, कोई गलत है ऐसा मैं कदापि नहीं कह रहा हूं, इसी सब फैक्ट। हमको नियत कर्म करने के लिए उत्साह नहीं है, बच्चों के पास समय नहीं है, संसार में बताने वाले उपलब्ध नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये समाज, ये पीढ़ी, ये आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? हमारा तो सौभाग्य है कि कम से कम हमारे बचपन में हमारे दादी दादाओं ने, हमारे जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ तो कथा बोली है, या हमारे माता पिता ने कुछ ने तो सोने के लिए पुतना के अवध की कथा बोली है, तो कभी है ना रावण की कथा बोली सोने के लिए। अभी के जो मॉडर्न पेरेंट्स है उनको खुद को ये कथा है पता नहीं, अब वो क्या बताएंगे, कौन से सिनेमा में कौन से एक्टर ने क्या किया, कौन से एक्ट्रेस ने क्या किया, और वो बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे 10-15 साल बाद, घर का सिनेमा बना देंगे, पूरे संसारिक जीवन में अनर्थ हो जाएगा, पूरे समाज में अनर्थ हो जाएगा, पूरा संसार, पूरा देश भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ये आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं समस्त मानव के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है, और इसकी शुरुआत हमको अपने से करनी है। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो इसलिए अखंड हरिनाम होते रहना चाहिए अपने जीवा के द्वारा, नियत कर्म करने में उत्साह रहना चाहिए, जो उत्सव होते हैं उत्सव का अर्थ समझना चाहिए, उसका तत्व समझना चाहिए, अपने जीवन में उसका केवल 11 दिन के लिए एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, 9 दिन के लिए नहीं, या दिवाली के 5 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन भर के लिए ये हमारे मैसेज संदेश ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उत्साह है, वो उत्साह को लेके अपने पूरे जीवन भर को शुद्ध बनाना, अशुद्धता से दूर रहे, तभी समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, संपूर्ण जगत का कल्याण होगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? क्या भगवान भगवत गीता में आगे कहेंगे, वो कहते मैंने ये ज्ञान सबसे प्रथम सूर्य देव को दिया, सबसे प्रथम यह ज्ञान किसको दिया, सबसे पहले फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर उनकी परंपरा में अनेकों अनेकों, भगवान यह ज्ञान अनेकों युगों पहले, सनातन ज्ञान है जिसका कोई अंत नहीं है, ना कोई उसकी शुरुआत, बहुत अनेकों अनेकों वर्ष पहले दिया गया, परंतु किसी कारण से यह ज्ञान लुप्त हुआ था, फिर भगवान बार बार आते हैं यह ज्ञान देते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि महाभारत के पहले हुआ कि बाद में हुआ, महाभारत कब हुआ, 5000 वर्ष पहले तो हुआ, यह ज्ञान तो 5000 वर्ष पहले का ही तो है, ऐसी बात नहीं है। आगे जाके भगवान इस बात का स्वयं उत्तर देंगे, यह इसको सनातन, यह ज्ञान कैसा है, यह सनातन धर्म का ज्ञान है, ऐसा धर्म जो कभी खत्म नहीं। अभी भी जैसे देखो, जो अभी जो 5000 वर्ष पहले दिया, लेकिन कितने लोग भगवत गीता को जानते हैं, लुप्त हुआ तो फिर 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने इसका गीता भागवत प्रचार, भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार किया, फिर वो लुप्त, फिर वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में प्रभुपाद जी है, फिर ये चलते रहता है। फिर अब हमारा जिम्मेदारी है कि इसको लुप्त न होने दे, हमारी जिम्मेदारी है ना इसको लुप्त न होने दे। आपको विस्तृत पढ़ना है तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें उत्तर है इसका, मैंने आपको शॉर्ट में उत्तर दिया। ये ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कहां शुरू हुआ, ये ज्ञान भगवान के साथ ही शुरू हुआ, इसलिए ये सनातन है, सनातन धर्म का ज्ञान। मैंने लास्ट टाइम भी इसका उत्तर दिया माता जी फिर भूल गई, लास्ट टाइम मैंने इसी का उत्तर दिया था मैंने पिछले समय इसका उत्तर दिया था, मैंने यह बोला था कि भगवान ने यह नहीं बनाया, हमने भगवान को बनाने के लिए मजबूर किया। जब बच्चा कुछ हट करता है, चाहिए चाहिए चाहिए, तो पिता को लगता है ये गलत है, पर जाने दे, अभी इसे 10-20 चॉकलेट खाए, फिर मांग रहा है, अभी एक बार चलो ले लेते, पता है इससे उसका नुकसान होगा, पर हट गए हमको स्वतंत्रता दी गई, हम स्वतंत्र है, मनुष्य प्राणी स्वतंत्र है, बाकी जीव स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र है। हमारी स्वतंत्र इच्छा हमने भगवान के साथ प्रकट की, हे भगवान आप तो नित्य आनंद में रहते हो, बड़ी मजा में रहते हो, पूर्ण हो, सब कुछ आपके पास है, बड़े एंजॉय करते हो, आनंद में रहते हो, हमारी भी इच्छा है आनंद को भोगने की, हमको भी आनंद चाहिए, हमको भी सब कुछ ऐश्वर्य चाहिए। अर्थात हमारे अंदर थोड़ा बहुत भगवान के संबंध में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, तो भाई वहां भगवान के साथ साथ रह के ऐसा सब कैसे, क्योंकि हमारी इच्छा में स्वार्थ है, तो स्वार्थ अर्थात अनर्थ है ना, तो वो भगवान की जगत में अनर्थ को कोई स्थान नहीं, तो भगवान को क्या करना पड़ा, दूसरा जगत निर्माण कर। कोई बात नहीं, आपको एंजॉय करना है, आपको बहुत सुंदर फाइव स्टार मकान बांधना है, आपको फाइव स्टार गाड़ी लेना है, आपको फाइव स्टार ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेरे जैसा चाहिए, आपकी इच्छा से मैंने जगत बांध दिया है, वैसे अब आपके कर्म जाने और आप जाने, जाओ वहां कर्म करो, भोगो भोगो, नहीं तो जो भी करना है करो, भोग या योग जो चाहिए वो ले लो, वहां जाओ, योग चाहिए योग लो, भोग चाहिए भोग लो, आप फिर अगेन फिर आप स्वतंत्र हो, क्या चाहिए वो ले। तो भगवान ने क्या गुना किया, भगवान बेचारे ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा, अब यहां आके हम भूल गए, और भगवान को हमने ये भी बोला था वहां जाके हम बहुत अच्छी भक्ति करेंगे और फिर वापिस आ जाएंगे आपके उधर, ये भी हमने भगवान को बोला था, हाँ वचन दिया था हम आएंगे यही तो कर्जा लेके आए इधर, यही कर्जा लेके आए, ये इतना बड़ा कर्जा लेके आए और उसका एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा दिया, यहां पे आए इधर सब बहुत अच्छा लगने लगा, क्या करेंगे भगवान का याद करके, इतना यहां सब कुछ इतना सुंदर सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अब समय कहां है भगवान को याद करने के, है कि नहीं। तो ये सब हमारे ही कार्यकलाप है, भगवान को दोष देने में क्या लाभ,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।